Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो पहला चरण क्या है कि मैं विराट हूं, पहले मैं पुरुष हूं, ये तो हमारा सामान्य अनुभव है। फिर मैं जागृत अभिमानी हूं, ये उससे श्रेष्ठ अनुभव है। और फिर मैं विराट हूं, ये सत्य के अधिक अनुभव है। यहां तक पहुंचाता है ये पहला चरण। अब इससे अगला मंत्र चालू होता है, स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविव्यक्त भोक् तैजसो द्वितीय पाद। वैसे एक नंबर अच्छा होता है कि दो नंबर अच्छा होता है? अब बिजनेस में तो नारायण दो नंबर का पैसा चाहिए सबको। तो हमारे एक मित्र थे, बिजनेसमैन थे, तो वो कहते थे ये सब गाली क्यों देते हो हमको, दो नंबर का पैसा कोई नोट हम छापते हैं? नोट तो वही होते दो नंबर दो नंबर। अरे एक ही नोट है, उसे चाहे एक नंबर बोलो चाहे दो नंबर बोलो। तो नंबर तो सब अपने हिसाब से है ना, जिसको आप छिपा के रखते हो वो दो नंबर हो जाता है। काम तो दोनों बराबर करते हैं, एक नंबर का भी वही काम करेगा, दो नंबर का भी वही काम करेगा। एक को छिपाना चाहते हैं, एक को जगर है। तो ये छिपा करके ये द्वितीय पाद है, दो नंबर का है। जागृत तो सबको दिखती है, सबकी जागृत सबको दिखती है, लेकिन सबके सपने सबको नहीं दिखते। अपना सपना अपने को ही दिखता है। एक दफा महाराज श्री साहब ने कहा, महाराज जी कुछ पांच मिनट आपसे अकेले में बात करती है। तो बोले देखो, परमात्मा के बारे में कुछ बात करनी हो तो उजागर करो, उसमें कुछ छिपाना नहीं। और अगर अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई बात हो तो कह सकते हो कि आपसे हम अकेले में बात करें, क्योंकि सब बातें सबको बताने की नहीं होती है। मन के बात तो है, व्यक्तिगत भी है और परमात्मा संबंध साधन संबंधी जो बात है वो परमात्मा संबंध भी है और व्यक्तिगत भी है। अगर मान लो लोग ये जान जाएं कि भाई ये साधन में बहुत कमजोर है, तो आपको ये लगता है कि नहीं, हम चाहें तो कमजोर लेकिन दुनिया हमको श्रेष्ठ माने, तो आप तो हिपोक्रेट हो ना। अरे जो हो वही दिखो, इसमें ज्यादा दिखाने की जरूरत क्या है, समझेंगे समझ लेंगे। तो फिर बोले, हंस के बोले कि हमारे पास लोग आते हैं तो किसी दिन झूठ मूठ को भी सपने में भगवान के दर्शन हो गए तो उसको सबके सामने बताएंगे, महाराज आज तो हमें राम जी के दर्शन हुए। और अगर रात को कोई खराब सपना आ गया तो उसे चुपके से किसी के सामने बताएंगे नहीं, और हमको भी कान में जाकर बताएंगे। तो ये नंबर द्वितीय पाद है, दो नंबर का है, लेकिन ये एक के बाद दो जो आता है उसका अर्थ वह है, माने एक से आगे। अब जागृत मैं विराट हूं, यहां तक तो पहुंच गए। अच्छा, विराट का शरीर क्या होता है? तो ये संपूर्ण विश्व जो दिख रहा है ये विराट का शरीर है। तो आप ऐसे ही अपना नाम विराट मत रख लेना। हमारे एक नगर में रहते थे तो बड़े मोटे थे वो, तो लोग उन्हें विराट जी बोलते थे, उसी नाम से मशहूर थे। तो विराट माने कितना बड़ा, अरे संपूर्ण विश्व जिसका शरीर है उतना बड़ा, इसकी तो कोई आपके पास सीमा ही नहीं है। तो अनंत प्राय है उसका शरीर, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। अर्जुन को जो भगवान ने 11वें अध्याय में अपना स्वरूप विराट का दिखाया है, वो विराट दर्शन ही तो है ना, तो उसमें मृत्यु भी दिखाई है, जीवन भी दिखाया है। तो जब आप समष्टि विचार करते हो तो छोटी छोटी समस्याओं से हट जाते हैं। कितने आदमी ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा दुखी हैं, लेकिन अपना छोटा सा दुख भी बहुत हमको सताता रहता है। जब समष्टि का विचार करोगे, समष्टि मेरा शरीर है नारायण, इसमें दोनों बात है, जिनमें लोक संग्रह की वासना होती है वो कहते हैं समष्टि मेरा शरीर है तो मैं गरीबों की सेवा करूं क्योंकि वो मेरे शरीर में है गरीब, तो तुम्हारे शरीर में तो अमीर भी है नारायण। तो जैसी जिसकी वासना है, और जो विरक्त टाइप का होगा वो कहेगा गरीब भी हैं अमीर भी हैं, सब में मैं ही तो विराजमान हूं। जो सब में रहता है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो निष्क्रिय तत्व रहता है। तो कॉरोलरीज सबकी अलग-अलग अलहदा है, अंतःकरण की बनावट के ऊपर निर्भर करता है। तो अब दूसरा के अर्थ चालू कर रहे हैं, स्वप्न स्थान, स्वप्न है स्थान जिसका, फिर यहां वही तीन विभाग कर लो, स्वप्न पुरुष, स्वप्न स्वप्नाभिमानी और स्वप्न दृष्टा। तो यहां स्वप्न स्थान जो है अभिमानी के लिए, स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञ, इसकी प्रज्ञा जो है वो अंत है, भीतर की ओर है, मुट्ठी पूरी खुली, पूरी नहीं खुली है। अंत प्रज्ञ, प्रज्ञ इस प्रज्ञा जो है इसकी भीतर की ओर है। तो ये स्वप्न क्यों बोलते हैं इसको, बोले अर्ध जागृत अवस्था है, पूरी तरह से सोए भी नहीं है और पूरी तरह से जगे भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था तो जागृत में भी हो जाती है, मनोराज्य की जो अवस्था है, सोचते 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 जाने कहां पहुंच जाते, फिर झटका लगता है अरे कहां पहुंच गए। तो ये मनोराज्य स्वप्न और भक्ति में जो भाव राज्य है वो, यद्यपि इनके फल सबके अलग-अलग अलग-अलग हैं, भाव राज्य जो है वो सात्विक है और ये जो नींद वाला है ये तामस है, और मनोराज्य जो है ये राजस है। तो इनके फल भी सबके अलग-अलग हैं, लेकिन विचार की दृष्टि से तीनों एक ही कक्षा की है। तो इसमें प्रज्ञा जो है, जब आधा सो गया मन अंतःकरण और आधा जगा हुआ है, तो जो पहले जगा हुआ हिस्सा था, मैंने पूरा हाथ खुला और फिर बंद हुआ, तो वो बाहर से जो संस्कार लेकर के आया भीतर की ओर, तो वो जो हमारा अंतःकरण का पर्दा है उसके ऊपर वो बाहर के चित्र जो है वो छप जाते हैं। उसमें कुछ भीतर की वासनाओं से भी छपा ही रहता है पहले से ही, वो छोटी छोटी पहले छींटें आती थी कपड़े, आजकल तो पता नहीं आती है कि नहीं, छींट बोलते थे, बहुत बारीक 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 बारीक। तो ये छींट वाला अंतःकरण तो सबका ही होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो पुनर्जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। जन्म देता है तो छींट को लेकर के ही होता है, अनंत संस्कार इसमें भरे रहते हैं। तो छींट वाला तो ये रहता ही है। अब बाहर को लेकर के जागृत अवस्था से जब ये भीतर की ओर आया तो कुछ प्रेडोमिनेंट जागृत के जो संस्कार हैं वो जाकर के वो फिर और बड़े बड़े चापे लग जाते हैं। अब वही दिखने लगते हैं, उसी को सपना बोलते हैं। स्वप माने सोना, निद्रा, तो पूरा सोया भी नहीं है और पूरा जगा भी नहीं। अब जैसे अपन लोग बैठे हैं यहां सब, तो हम सपने ही देखते हैं ज्यादातर साधक लोग जो हैं, क्योंकि पूरे जगह भी नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी स्थित प्रज्ञ हो जाते तो हम तो जगे हुए कहलाते, अभी तो सोए भी नहीं है पूरे और पूरे जगह भी नहीं है, तो सब सपने में ही है। देखें सपन अनेक प्रकार नारायण। जब ये सपना देखना बंद हो, ये भौतिक सपना देखना बंद नहीं होगा, चाहे ज्ञानी हो जाओ चाहे कुछ योगी हो जाओ, क्योंकि ये पूर्व जन्म का जो रंगा हुआ अंतःकरण लाए हैं वो छोटी छोटी छींट तो आपको सपने में जरूर आएगी। हाँ, बाहर से चूंकि आपने संयम कर लिया है तो बड़े बड़े छापे जो उस पर लग गए थे वो छापे आपको नहीं मालूम पड़ेंगे, लेकिन कुछ तो मालूम पड़ता रहेगा। बोले जी हमने सपने में देखा, क्या देखा भाई? कि एक हाथी है। अच्छा ठीक है, हाथी आपने जागृत में देखा है। बोले उसके सींग है। हाथी के तो सींग होते नहीं, ये कहां से आ गया आपको? अरे बोले सींग वाला पशु देखा है आपने, तो एक छापा पड़ा हाथी का और तुरंत ही उसके ऊपर दूसरा छापा पड़ा सांड का, समझ लो। तो सांड का भी भारी शरीर होता है, हाथी का भी भारी शरीर होता है, वो तो शरीर शरीर आपस में मिल गए, उसके सींग उसके ऊपर लग गए। ये आज के मनोवैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि ये ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि क्षण क्षण में वृत्ति बदलती है। कभी लगता है स्वर्ग में पहुंच गए, कभी लगता है नरक में पहुंच गए। न स्वर्ग देखा न नरक देखा, पढ़ पढ़ के ही स्वर्ग और नरक की कल्पना कर ली है, वही कल्पना उनके ऊपर चलती जाती है। तो कुछ देखे हुए का कुछ सुने हुए का, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरश्यति तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुना हुआ और देखा हुआ, स्वर्ग जो है ये केवल सुना हुआ देखा नहीं है, और लौकिक के जो सुख हैं ये देखे हुए भी हैं और सुने हुए भी हैं। बोले अंबानी के मकान में क्या होता होगा, अब भीतर तो कोई गया नहीं है, सब बाहर से ही अनुमान कर रहे हैं ना, तो अपनी वासना जो है वो उसके साथ मिल जाती है। तो ओवरलैपिंग हो जाने के कारण विचित्र विचित्र स्वप्न जो है वो मनुष्य को दिखाई देते हैं। इससे वो लोग पुनर्जन्म की सिद्धि करते हैं, ये तार्किक दृष्टि से गलत है। स्वप्न से पुनर्जन्म की सिद्धि नहीं होती। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ, वो भीतर की ओर मुड़ गई है प्रज्ञा, आधी चौथाई है। सप्तांग, अब मैं तो वही हूं जो जागने वाला था, इसलिए सात अंग जो मेरे जागृत अवस्था में थे वो तो अपनी जगह पे विराजमान ही है, लेकिन अब जरा समष्टि में विचार करो। विराट की उत्पत्ति ऐसा समझो जैसा हमारा स्थूल शरीर है ना, तो स्थूल शरीर है और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है और इसके भीतर कारण शरीर है। ऐसे ये संपूर्ण विश्व सृष्टि जो है ये स्थूल शरीर है, इसका अभिमानी कौन है? विराट। और इस संपूर्ण स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसका अभिमानी कौन है? कि हिरण्यगर्भ। और उसके भीतर एक कारण शरीर है, उसका अभिमानी कौन है? कि ईश्वर। ये समष्टि में। और यहां क्या है कि जागृत में स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व और इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसका अभिमानी तेजस नाम है, और इसके भीतर जो कारण शरीर है उसका अभिमानी प्राज्ञ या जीव बोल दो। अच्छा, अब वहां भी भोग होता है सपने में भी, तो उसके कारण क्या है कि एको नविंशति मुखा, जो जागृत के कारण थे वही स्वप्न के कारण रहते हैं। ये आंख का गोलक तो बंद हो जाता है सपना के टाइम में, बाहर की आंख का गोलक तो बंद हो जाता है, तो बाहर की चीजें तो नहीं दिखती, लेकिन वो नेत्रेंद्रिय जो है वो चूंकि मन के साथ संयुक्त रहती है इसलिए वो तो जगी रहती है। तो यहां बाहर से ले लेकर के अनुभव में लाती है, और वहां पहले अनुभव किए हुओं को मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं वो नेत्रेंद्रिय उनको रूप प्रदान कर देती है। इसीलिए वहां गड्ढे रूप होते हैं और सपाट नहीं होते। यहां तो आप एक आदमी को देख लो तो 50 वर्ष बाद भी पहचान लोगे कि हाँ ये वही आदमी है, लेकिन सपने का एक क्षण बाद भी यदि उसी आदमी को सपने में देखो तो नहीं पहचान सकते। एकोनविंशति मुखा, अब ये बौद्धों ने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उन्होंने कह दिया दुनिया सब सपना है। तो दुनिया सपना नहीं, जागृत अवस्था सपना है नारायण, तो ऐसा नहीं है। वो जहां से बोलते हैं वहां पर तो ऐसा ही दिखता है, बुद्ध तो अपने अल्टीमेट स्टेज में बैठ कर बोलते हैं, लेकिन बोल किन को रहे हैं? जो बिल्कुल धरातल पर हैं जमीन पर, उनको तो नहीं दिखेगा। इसलिए अपने यहां सनातन धर्म जो वेदांत है वो कहता है कि भाई ये दुनिया जो है ये सपना नहीं है, ये स्वप्नवत मिथ्या है, स्वप्न के समान मिथ्या है। जैसे सपना टूटते ही वहां की दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसे यहां का एक दृश्य हटा सब टूट गया। अच्छा, कितने आदमी आपके जीवन में आए अब तक, याद है सब? अरे कल क्या खाया था? ये भी याद नहीं है। तो क्या क्या मतलब स्वप्नवत ही है ना ये, आया गया आया गया आया गया। बोले नहीं, ये तो कोई आदमी है जिसको हमने 20 बरस पहले देखा था। तो बोले भाई साहब आप वही आदमी हो ना? बोले नहीं, तो मैं तो वो बेटा बनारसी ने कविता लिखी था, धोखा हो ही गया हो ही गवा। धोखा बनारसी टोन में लिखा, धोखा हो ही गवा। तो थी वो लड़की, कपड़े उसने पहन रखे थे लड़के के, अब उसने कहा ये लड़का तो वो है जो हमारे साथ पढ़ता था, जाके उसके पीछे हाथ मारा, कहा भाई यहां घूम रहा है? धोए गवा ही गवा। तो ये सब ऐसे ही है, सेंट परसेंट सिमिलरिटी नहीं होती है। अपना ही फोटो देख लो दूसरे की क्या बात है। बचपन का फोटो एक हमारे पास था तो हमारी माता श्री बोलती थी कि ये तू है, कि अच्छा भाई ऐसा था क्या। अभी कल एक साहब कह रहे थे कि इंटरनेट पे हमने आपका प्रवचन सुना मगर जो उसमें फोटो आपका आता है वो तो वो नहीं है जो आप इस समय हो, बल्कि वो तो पुराना फोटो है भाई। तो फोटो फोटो इसे ही नहीं पहचान पाते, अपना ही फोटो नहीं पहचान पाते। तो स्वप्नवत है, स्वप्नवत मिथ्या। प्रविवेक्त भोग, अब यहां भोग किन चीजों का होता है? दाल भात तो छोड़ के आ गए हम जागृत अवस्था के। राजा जनक राजा हैं लेकिन सपने में खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी भी वो खा नहीं पाते। तो कथा सुनी है ना हमने। तो अब क्या कहो, बोले राजा जनक का प्रारब्ध ही ऐसा था। अरे प्रारब्ध प्रारब्ध हुआ, सपने में कहां से आया भाई। तो प्रविविक्त भोग, विविक्त माने जागृत अवस्था से बिल्कुल अलग भोगों का भोग, अर्थात सूक्ष्म भोगों का भोग वह करते, स्थूल भोग नहीं है। लेकिन ऐसे भोग भी हैं कि उनका परिणाम स्थूल होता है। स्त्री प्रसंग आदि के जब दृश्य आ जाते हैं तो पुरुषों को मालूम है कि उसका परिणाम स्पष्ट हो जाता है। तो नारायण ये ऐसा नहीं है कि नितांत भिन्न अवस्था हो स्वप्न जो है, जुड़ा तो रहता है जागृत से क्योंकि मुट्ठी अभी पूरी बंद हुई नहीं है, आधी खुली है। प्रविवेक्त भोग तैजसो द्वितीय पाद, इसका नाम तैजस है। समय तो हो गया, तो तेजस शब्द का अर्थ कल बताएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः।